بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج بھی ہم انداز جہاں میں توہین رسالت اور اس پر سامنے آنے والے عالمی رد عمل پر گفتگو کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. ناظرین توہین رسالت کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ فرانس کے ایک جریدے میں توہین آمیز خاکے شائع ہونے کے بعد ان میں وسعت آ گئی ہے. فرانس کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت کی آزادی اظہار کی آڑ میں حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ آزادی اظہار ان کے ملک میں بقول ان کے ایک مقدس حق ہے جو کسی بھی حال میں سلب نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ ابھی حال ہی میں فرانس کے ایک جریدے نے ملکہ برطانیہ کی بہو کی ایسی تصویر شائع کر دی تھی جو نازیبہ حالت میں لی گئی تھی، اور اس کی پاداش میں حکومت فرانس نے اس میگزین کو بند کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مغربی حکام بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہر معاملے میں دوہرے معیار اپناتے ہیں. آزادی اظہار کے نام پر اسلام اور اسلامی مقدسات و اقدار کی توہین کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جہاں ان کا مفاد متقاضی ہوتا ہے وہاں سخت سینسرشپ کے ذریعے آزادی اظہار کو سلب کر لیا جاتا ہے. حتیٰ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں چھیڑنے اور ان سے متعلق سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیسے ہولوکاسٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ صہیونی حکومت کس طرح قائم ہوئی اور اس کے ناجائز قیام کے سلسلے میں کتنے مظالم کیے گئے. یہ باتیں اگر کوئی اٹھائے تو امریکہ اور یورپ میں آزادی اظہار سلب کر لی جاتی ہے. چنانچہ ابھی کچھ سال قبل امریکہ میں گاندھی فاؤنڈیشن کے سربراہ مہاتما گاندھی کے پوتے ارون گاندھی کو صرف اس لیے امریکہ سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں یہ لکھ دیا تھا کہ اسرائیل قائم کرنے کے سلسلے میں فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا ہے. فرانس کی حکومت نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی حمایت تو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی دنیا میں سخت رد عمل کے خوف سے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو 20 اسلامی ملکوں میں اس کے سفارت خانے، قونصل خانے، اسکول اور تمام ثقافتی مراکز بند رہیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت فرانس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ وہ حرکت ہے جس نے دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور اس پر مسلمانوں کا سخت رد عمل سامنے آئے گا. اس کے باوجود اس گھناؤنی حرکت کا جو خود اس کے مفاد کے بھی خلاف ہے دفاع کر رہی ہے، تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کون سا ایسا ہدف ہے جس کے لیے مغرب ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے. اور صاف اور واضح لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اور اسلامی مقدسات کی جتنی بھی توہین ہو رہی ہے اس کے پیچھے صہیونی لابی کا ہاتھ ہے، تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل غاصب صہیونی حکومت میں ایسا کیا ہے کہ اس کے لیے امریکہ سے لے کے فرانس تک مغربی دنیا کا ہر ملک اپنا وقار، اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنا ہر مفاد داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے. تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ایک ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی صدیقی صاحب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی فلم کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا کہ فرانس کے ایک جریدے نے توہین آمیز خاکے شائع کیے۔ یہ مسلسل جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور یہ اشتعال انگیزی جو کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون سا ہدف کار فرما ہے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے اس نہایت ہی شرنگیز اور ناپاک فلم کے حوالے سے، اور اس کے بعد ابھی فرانس میں جس طرح کے خاکے سامنے آئے، یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے۔ بہت پہلے سے یہ چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور شاید جس طرح کا رویہ ہے مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا، یہ چیزیں آئندہ بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یقیناً بڑی ہی ایک ناپاک سوچ موجود ہے، اور ان عناصر کو جو یہ کام کرتے ہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آپ کا نام نامی جو ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، آپ کی کیا عزت و عظمت ہے۔ شاید وہ اس کا پوری طرح احاطہ تو نہیں رکھتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہر مسلمان، چاہے وہ کتنا ہی ناقص العمل کیوں نہ ہو، چاہے اس کی زندگی پوری طرح اسلامی آداب کے تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہو یا نہ ڈھلی ہو، چاہے وہ صرف کلمہ گو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیس کا معاملہ آئے گا، آپ کے ناموس کا معاملہ آئے گا، آپ کی حرمت کا معاملہ آئے گا، اور اس پہ کوئی آنچ آئے گی، تو کسی مسلمان کے لیے، کسی بھی درجے کے مسلمان کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ یہ چیز شاید مغرب کو اور یورپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو ایک تو اشتعال دلانے کی، مشتعل کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں، جس طرح وہ اس سارے اپنے مکروہ عمل کو، متفن عمل کو، توہین آمیز عمل کو، غیر انسانی عمل کو یہ کہہ کے لپیٹ دیتے ہیں جی کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے خود اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ جب یہ اظہار رائے کی آزادی کچھ خاص حدود میں داخل ہوتی ہے، جن کے بارے میں وہاں حساسیت پائی جاتی ہے، چاہے وہ ملکہ برطانیہ کی بہو ہو یا ہولوکاسٹ کا معاملہ ہو، اور کوئی اگر اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال کرتا ہے جس سے اس ایک تاریخی مغالطے کی کوئی نفی ہوتی ہو، تو وہاں تو آزادی اظہار رائے کا سارا جو قلا ہے وہ مسمار ہو جاتا ہے، کوئی اس چیز کا خیال نہیں کرتا۔ لیکن ناموس رسول کے حوالے سے یہ ساری چیزیں وہاں برداشت کی جا رہی ہیں، نہ صرف برداشت کی جا رہی ہیں، ان کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک چیز میں اکثر سوچتا ہوں کہ امریکہ بڑا حساس بنتا ہے اپنی طرف سے شخصی آزادیوں کے حوالے سے، اور اپنے ملک میں وہ کہتا ہے جی کہ انسانی حقوق کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، آزادیوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو بے شمار ایسے قوانین آ گئے جہاں شخصی آزادیاں سلب کر لی گئیں، جہاں پولیس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ آپ جس کو چاہیں پکڑ کے لے جائیں اور ایک مہینے کے لیے اس سے باز پرس کریں، جہاں جگہ جگہ ناکہ بندیاں لگ گئیں، جہاں سڑکیں رک گئیں، جہاں تلاشیاں ہونے لگیں۔ یہ ساری چیزیں جو وہاں کے بنیادی حقوق تھے، وکلاء نے اس پہ آواز بھی اٹھائی، اس سے متصادم تھی، لیکن اپنی حفاظت یا اپنے تحفظ کے لیے امریکیوں نے کہا، ان کی انتظامیہ نے کہا کہ یہ عمل ناگزیر ہو گیا ہے، چاہے آئین کے اندر یہ ضمانتیں دی گئی ہیں، لیکن وقت کی ضرورت کی وجہ سے ہم ان پہ قدغن لگانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ اصول یہاں لاگو نہیں کرتے وہ، کہ ایک آگ کا شعلہ جو بھڑکتا ہے کسی ناپاک فلم کے حوالے سے، کسی کارٹون کے حوالے سے، کسی تحقیر آمیز مضمون کے حوالے سے، کسی غلیظ آرٹیکل کے حوالے سے، وہ نہ صرف امریکیوں کے لیے کیا مسائل کھڑے کرتا ہے، یورپ کے لیے کیا مسائل کھڑے کرتا ہے، یا فرانس کے لیے، یا ڈنمارک کے لیے کیا مسائل کھڑے کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک سفارت خانے پہ حملہ ہوا لیبیا میں، ان کا سفیر بھی قتل ہو گیا، اور بھی افراد گئے اس میں، ان کے خلاف نفرت کتنی پھیلتی ہے، ان کے اہداف کتنے مجروح ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہوئے اس آزادی اظہار رائے کا قانون نہیں بنا سکتے कि जनाब दूसरों की जो मजहबी अलामत होती हैं, शख्सियात होती हैं, उनकी तकरीम और उनकी ताजीम हम सब पे फ़र्ज़ है, और अगर उस पर कोई आँच आएगी तो चूँकि उसकी इम्प्लिकेशन होती हैं, पोलिटिकल इम्प्लिकेशन होती हैं, वजूद को ख़तरा पड़ता है रियासत के, नफ़रत फैलती है, लिहाजा हम इस पर कदगन लगाने के लिए कोई गौर व फिक्र करेंगे। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक देखिए ना, जब वो ये कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय है, तो हमारे यहाँ जब ये इश्तियाल फैलता है तो वो फिर आज़ादी इजहार अमल की बात करते हैं कि ठीक है आप अपनी राय का इजहार करें, हम अपने अमल में आज़ाद होंगे। तो जब अमल में कौमें आज़ाद हो जाती हैं तो फिर वो फ़ज़ा बनती है जिसको कभी वो इंतहा पसंदी कहते हैं, कभी दहशतगर्दी कहते हैं, कभी अलकायदा का नाम दे देते हैं, कभी कोई और नाम दे देते हैं। तो ये बुनियादी रवैये उनकी सोच के अंदर जो रच बस गए हैं, इन रवैयों का तदारुक करने के लिए उन्हें खुद अपना जायज़ा लेना होगा, खुद एहतसाबी करना होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, वो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम तो 57 इस्लामी ममालिक होते हुए भी अमलन राख का ढेर इसलिए हो जाते हैं कि कोई इज्तमाई हिकमत अमली नहीं बना पाते। इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, अरब लीग भी मौजूद है, पता नहीं क्या क्या इदारे हमने बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई तवाना आवाज़ नहीं उठती। इनफरादी तौर पे लोग उठ खड़े होते हैं, या बाज़ ममालिक ऐसे हैं, आपके यहाँ ईरान से बड़ी तवाना आवाज़ उठी है, पाकिस्तान ने ऐलान किया है जी कि कल एक खसूसी दिन मनाया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आएंगी या एक दिन गुजरेगा और चली जाएंगी। मगरिब को एक तवाना, बड़ा ही साउंड, बड़ा ही स्ट्रांग, बड़ा ही ताकतवर मैसेज जाना चाहिए कि जनाब ये खेल का मैदान नहीं है, और मैदान आप चुन लीजिए अपनी तबा आजमाई के लिए, अपनी इजहार राय के लिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर ये नापाक जसारतें आपकी खत्म नहीं होंगी, कभी आप कुरान करीम के औराक चर्च के अंदर खड़े होकर जला देते हैं, ये यहूदियों नस्ल शख्स ने जो हरकत की है, इसको मालूम होना चाहिए था कि इसी फ़लस्तीन के अंदर जब बैतुल मक़दस फतह होता है तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या रवैया था, यहूदी उलमा के साथ किस तरह के मुआहदे किए गए, किस तरह उनकी इबादत गाहों की तकरीम की गई, किस तरह उनके जो तहफ़ुज़ात थे दूर किए गए। तो इस्लाम तो बुनियादी तौर पर इंसानी तहजीब की नशोनुमा, हमांगी, खैर सगाली, तहम्मुल और बर्दाश्त का दीन है। आज तक 57 ममालिक में आप नहीं देखेंगे कि कहीं भी किसी भी मजहब की तौहीन की गई हो। फ़िरकावाराना फसादात छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन मजहबी शख्सियत की, किसी मजहबी किताब की, किसी मजहब की तहकीर व तौहीन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये जो सो कॉल्ड नाम नहाद तरक्की याफ्ता बनते हैं, महजब बनते हैं, तालीम याफ्ता बनते हैं, जमहूरियत के पासवान बनते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इनके रवैये जाहिलाना हैं, पस्त हैं, और ऐसे हैं जिनसे मैं समझता हूं कि इंसानियत की कोई अदना सी रमक भी महसूस नहीं होती। जितना जल्द वो इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे और अपने आप को महजब अकवाम की सफ़ में ला के खड़ा करेंगे, ख़ुद भी एहतराम पाएंगे, दूसरों का एहतराम करेंगे, तो शायद दुनिया अमन का गहवारा होगी। ये हरकत ना अमरीका के काम आएंगी, ना फ्रांस के काम आएंगी, न बरतानिया के काम आएंगी, न डेनमार्क के काम आएंगी, न किसी और के काम आएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तान के एक सीनियर तज़िया निगार हैदर हुसैन साहब से। हैदर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जनाब, ये जो अमरीका में और उसके बाद फिर फ्रांस में ये जो तौहीन रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर यूरोप में क्या रद्द अमल पाया जाता है?
देखिए, जहाँ तक हुकूमतें हैं उनका तो वही मौकिफ है जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जनाब इन हमारे मुआशरों में मजहबी आज़ादी है और आज़ादी इजहार राय है, लिहाजा हम किसी चीज़ पर कतगन नहीं लगा सकते। लेकिन अवाम के अंदर ये बात महसूस की जा रही है कि ये एक जो यूरोपीय अवाम है वो ये समझ रहे हैं कि ये जो फिल्म है और ये जो खाके जो बनाए जाए हैं, जो शाये किए गए हैं, ये एक इश्तियाल दिलाने की कोशिश है मुसलमानों के दरमियान, और जो यूरोप में मुसलमान आबाद हैं वो भी इस चीज़ को इंतहाई संजीदगी के साथ देख रहे हैं, और यहाँ पर भी जगह जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे जो हैं, मुख्तलिफ मुसलमान तंजीमें जो हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे कर रही हैं, लेकिन यहाँ के जो मुजाहरे हैं वो ज़्यादा पुरअमन हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग जो हैं वो इश्तियाल अंगेज चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं करते, लेकिन ये कि बहरहाल मुजाहरे यहाँ पर भी हो रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि मुसलमान यहाँ यूरोप में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि मुस्लिम दुनिया जो है वो इस वक्त इतनी कमज़ोर है और वो इतनी मुंतशिर है कि वो एक कोई मिलकर कोई ऐसा लाइहे अमल तैयार नहीं कर सकती जिसकी जिसकी बाइस वो मजबूर कर सके यूरोप को और हमें वेस्ट को मगरिब को कि वो इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि कभी सैटेनिक वर्सेस के नाम पे किताब शाया होती है, कभी खाके बनाए जाते हैं, कभी फिल्म बनाई जाती है जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इश्तियाल अंगेज चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो अब ये मुसलसल पिछले 15-20 सालों से जब से सैटेनिक वर्सेस शाया हुई है ये चीज़ें हर वक्तन फवक्तन 5-6 साल के बाद कोई ना कोई नई बात हो जाती है और मुस्लिम दुनिया का जो रिएक्शन होता है वो एक उबाल की तरह होता है। मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे होते हैं, तोड़फोड़ होती है, 10-15-20 आदमी मर जाते हैं, उसके बाद फिर मामला खत्म हो जाता है। मसला ये है कि जो मुस्लिम हुकूमतें हैं, अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने इस तरफ इशारा किया कि OIC है, अरब लीग है, अभी देखिए आपके मिडिल ईस्ट में बिल्कुल खामोशी नजर आती है। वो हुकूमतें जो अमरीकी एजेंट हैं, जो जिनके जो हुक्मरान हैं वो अमरीकी यानी उस पर चल रहे हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। जो मुजाहरे हो भी रहे हैं वो उन इलाकों में हुए हैं, उन अरब ममालिक में हुए हैं जहां पर इंकलाब आ गए हैं, जहां पर हुकूमतें तब्दील हो गई हैं, उन इलाकों में मिस्र में हुआ, ट्यूनिस में हुआ, या लीबिया में मुजाहरा हुआ, या उधर फारिस्ट में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो अरब लीग है वो बिल्कुल इस मौके पर खामोश है। अगर अरब लीग और OIC इस्लामी ममालिक की तंजीम मुश्तरका तौर पर एक लाहे अमल तैयार करें और एक बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी जाए वेस्ट को कि जनाब इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, हम मजीद इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला लेकिन यह है कि मुस्लिम जो क्यादतें हैं वो उनके मफादात हैं, वो उनको तहफुजी अमरीका बहादुर जो हैं वो फराहम करते हैं, लिहाजा वो कोई ऐसा मौकफ इख्तियार नहीं करते जिससे वो इन हुकूमतों पर असरअंदाज हो सके, मगरिब पर असरअंदाज हो सके। अगर इस तरह नहीं होगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी ये मामला कुछ अरसे के बाद दब जाएगा, 2-3 साल 4 साल के बाद फिर कोई शख्स उठेगा और कोई ऐसी हरकत कर देगा कि एक दफा फिर जो है ये गुस्सा मुसलमानों को इश्तियाल आ जाएगा और मुसलमान के इश्तियाल के अंदर हमें उल्टा हम ही को नुकसान होगा, हमारी अपनी ही हम चीजें जलाएंगे और वो करेंगे। बुनियादी तौर पर जो बात है वो ये है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक एक मुश्तरक लाहे अमल तैयार नहीं किया जाएगा कि ऐसी सूरत में हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, हम किस तरह से अक़वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर या दीगर फोरम के ऊपर अपनी आवाज उठा सकें और एक मुश्तरक तौर पर जिद्दोजहद कर सकें कि जनाब ये कुछ आपकी अजहार राय की आजादी अपनी जगह पर, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं ले सकते कि आप 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी करें। यहां हम यूरोप में रहते हैं, हम एक खास वक्त के बाद रात को यहाँ पर लोग म्यूजिक ऊंची आवाज में नहीं सुन सकते क्योंकि मेरी आजादी इजहार राय जो है वो महदूद है इस हद तक कि मेरा पड़ोसी उससे परेशान ना हो। अगर मेरा पड़ोसी परेशान होता है तो मेरी आजादी इजहार जो आजादी है वो वहीं खत्म हो जाती है। वो जब चाहे वो पुलिस को फोन करके और वो मेरे घर से जो है वो उठा के ले जाएंगे कि जनाब आप इतनी मुसीकी जो है वो रात को इतनी ऊंची आवाज में क्यों सुन रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर भी मसाइल हैं, यहाँ पर भी कोई एब्सोल्यूट आजादी नहीं है कि हर आदमी जो चाहे करता फिरे। अभी हमारे सामने जो मिसालें हैं कि फ्रांस के अंदर जब केट मिडिलटन की तस्वीर शाया हुई तो फौरन जो है वो जनाब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जनाब ये तस्वीर शाया ना की जाए और उसके अगले दिन ही फिर कार्टून शाया करने की बात हो गई, उसके लिए आप फरमा रहे हैं कि आजादी इजहार राय। मगरिब के अंदर ये प्रॉब्लम जो है, ये जो दोहरा मियार है, ये इनको खत्म करना होगा और वो सिर्फ उसी वक्त खत्म होगा जब मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर एक आवाज होकर एक लाहेमल तैयार करेंगे और इन हुकूमतों को ये मजबूर करेंगे कि वो हमारे इन चीजों का ख्याल रखें। अगर ये चाहें तो कानून बना सकते हैं, अगर ये चाहें तो इन लोगों को जेलों में डाल सकते हैं कानून बनाकर, जैसे इन्होंने यहां पर मिसाल के तौर पर होलोकॉस्ट के बारे में किया हुआ है कि कोई शख्स जो है होलोकॉस्ट का डिनायल नहीं कर सकता, अगर करेगा तो काबिले सजा जुर्म है वो, जिसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये यहां पर भी इस तरह के कानून बना सकते हैं अगर ये बनाना चाहें तो, लेकिन क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है इनके पर। हमारी जो मुस्लिम हुकूमतें वो सबके सब हमारे, अब पाकिस्तान की आप मिसाल ले लीजिए, अगर आपको अमरीका से इमदाद लेनी है तो आप कैसे उनके सामने कोई एक सदाए एहतजाज बुलंद कर सकते हैं। अगर आप दस्त नगर हैं, अगर आपका हाथ फैला हुआ है उनके सामने तो आप कैसे उनकी आंखों में आके डाल के बात कर सकते हैं। देखिए जब तक इंसान मुसलमान बहसत मुसलमान हमारे अंदर खुद मुख्तारी नहीं पैदा होगी, हम अपनी ذات پہ انحصار کرنا نہیں سیکھیں گے، اگر ہم ان کے اوپر انحصار کریں گے، اگر ہم ویسٹ پہ اور مغرب پہ انحصار کریں گے تو ہم کبھی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی کوئی بات ہم ان سے نہیں منوا سکتے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ آئے دن مغرب میں کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور توہین کسی نہ کسی شکل میں توہین کرتا ہے، ہمیں شرمندہ کرتا ہے، ہمیں ذلیل، یہ ایک دانستہ طور پہ ایک طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں ذلیل کیا جائے، ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی جائے کہ جناب آپ کی اوقات یہ ہے، اور کیوں کہ ہمیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ہم ہر میدان میں معاشی طور پہ ان سے پیچھے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے ہے گوگل، ابھی گوگل نے یہ انکار کر دیا کہ ہم یہ فلم نہیں ہٹائیں گے، لیکن یہاں پہ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں گوگل جو ہیں، کتنی ایسی سائٹس ہیں جو گوگل فوراً بند کر دیتی ہے، کیوں بند کر دیتی ہے؟ اس وقت ان کو آزادی ظاہر ہے کیونکہ پریشر ہوتا ہے، اور وہ پریشر وہ برداشت نہیں کر پاتے، چاہے وہ معاشی پریشر ہو چاہے وہ سیاسی پریشر ہو، لیکن وہ پریشر برداشت نہیں کر پاتے۔ مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت مسلم جو اقوام ہیں وہ صفر ہیں، اور صفر کا جمع چاہے 52 ملک ہو یا 56 ملک ہو، اگر صفر کو 52 دفعہ بھی آپ صفر کو جمع کریں گے تو وہ صفر جواب ہی آئے گا۔ جب تک مسلمان قومیں خود، اور یہ بات نہیں ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے یا ہمیں امید نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم قومیں بھی اپنا ریوائیول ان کے احیاء ہوگا اور وہ آگے آئیں گی، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، آج نہیں ہوگا کل پھر 4-6 دن کے بعد، پھر 4 سال کے بعد، پھر 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نیا شوشہ اٹھے گا مغرب میں اور مسلمانوں کا جو ہے وہ اشتعال انگیز کر دے گا۔
بہت بہت شکریہ حیدر حسین صاحب، لائن پہ رہیے گا، اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ہی ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے ایک سینئر سیاستداں اور کانگریس پارٹی کے ایک مرکزی رہنما سابق ایم پی ایم افضل صاحب سے۔ ایم افضل صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب یہ مسلسل اسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، مسلمانوں کی تضحیک، یہ مغرب چاہتا کیا ہے؟
مغرب جو پہلے سے چاہتا تھا وہ اب بھی چاہتا ہے
جی،
اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام جو ایک بڑی طاقت ہے جی، اور مسلمان جو ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں جو نہیں ہیں ان کو بڑی طاقت نہ بننے دیا جائے۔ ابھی جو حیدر صاحب غالباً جو بھی صاحب ابھی بول رہے تھے، غالباً ان کا نام حیدر ہے
جی،
جی حیدر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ مختصر طور پر انہوں نے پورا جائزہ پیش کر دیا۔ میں ان کی بات میں اپنی بات کو ملاتے ہوئے ان سے 100% ایگری کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے 50 مسلم ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے حکمراں کیا کر رہے ہیں۔ عوام کی جہاں تک بات ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یا جیسا کہ انہوں نے کہا ان ملکوں کے اندر جہاں پر ابھی تازہ تازہ ایک نئی ہوا آئی ہے اور وہاں اقتدار بدلا ہے، وہاں تو احتجاج کی کچھ بوندا باندی ہو رہی ہے
جی،
اور ایران میں تو پہلے سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے، سلمان رشدی جیسے ملعون کو یہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی اس کی ہمت ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے، یعنی 2-3 دن پہلے اس نے پھر ایک بیان دیا ہے کہ اس نے جو کتاب لکھی تھی وہ اس سے بھی زیادہ خراب کتاب لکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام اور غالباً جو اس نے پہلے حرکت کی تھی اس تعلق سے غالباً وہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ اور مزید وہ لکھنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا نے اس کو سیکیورٹی دے رکھی ہے، یورپ نے اس کو سیکیورٹی دے رکھی ہے، تو جب تک دیکھیے ابھی بھائی صاحب نے کہا، حضرت صاحب نے کہ ہم احتجاج کریں گے اور اپنی پراپرٹیز کو پھونک دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ بات تو صحیح ہے بالکل، احتجاج ہمارا ہر جگہ پر امن ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اپنا بھی اسلحہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک اسلام کے خلاف جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنے اثاثے بھی کبھی کبھی پھونکنے پڑتے ہیں اور وہ پھونکے جاتے ہیں۔ اس طرح اقتدار بچانے کے لیے لوگ اپنے اثاثوں کو لگاتے ہیں داؤں پر، اسی طرح اپنی اس اثاث کو بچانے کے لیے جو ان کی پیدائش ہے، جو ان کا سمبل ہے، جس ملک جس مذہب میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس کے وہ گنگاتے ہیں، उसको बचाने के लिए भी उनको अपना असासा खर्च करना पड़ेगा। मेरा ख्याल यह है कि जो आपने कहा कि सबके मफादात हैं, मफादात तो सबके हैं, लेकिन आवाम का मफाद तो सिर्फ यही है कि इस्लाम महफूज रहे, और मुसलमानों का यह है कि कोई आदमी उस तरह की हरकत ना करे जिस तरह की ये हरकत हुई है। मेरी तो समझ से बाहर है। अमेरिका में अभी सही मिसाल दी उन्होंने कि बरतानिया के शहजादे की कुछ तस्वीर आ गई तो फ्रांस की अदालत ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और यही वो फ्रांस है जो बुरखे पर भी पाबंदी लगाता है, खवातीन मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी से अंदर हिजाब लेने पर भी पाबंदी लगाता है। तो इनके दोहरे मयार हैं। इनके लिए अगर मुसलमानों की दिल आजारी हो तो इनका मयार दूसरा है, और अगर दिल आजारी इनके अपने लोगों की हो तो इनका मयार दूसरा है। तो बड़े शर्मनाक एक पहलू है। लेकिन मैं मानता हूं कि बुनियाद असल में यह है कि जब तक मुस्लिम मालिक के हुक्मरान होश नहीं आएंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। बस सही कहा उन्होंने बिल्कुल कि अभी फिर कुछ अरसे के बाद इस तरह की कोई हरकत हो जाएगी, फिर कोई कोई शोशा छोड़ दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक मलाउन ने इसी तरह की बात की थी, अब इसने फिल्म बना दी, और मुझे नहीं मालूम कि उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं। कभी कुछ आ रहा है अखबारों में कि गिरफ्तारी हुई है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ है। लेकिन सही सूरत हाल अमरीका ने अभी तक वाजे नहीं की है। अब ये इतना बड़ा वायलेंस आज पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है कि डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर वहाँ लोग एहतजाज करते हुए घुस गए, गोलियां भी चल रही थी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जख्मी हुए या मरे। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को बचाने के लिए लोग तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके नाम पर इस्लाम के नाम पर हुकूमतें चला रहे हैं वो अपना कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक एक सिचुएशन है और इसका कोई हल समझ में नहीं आता। और ये एक मामला नहीं है, अभी जो पीछे सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पिछले 20-25 साल से
जी।
और जिस तरह से वेस्ट जो है पूरा एक महाजारा ही उसने की है। उनकी पॉपुलेशन कितनी है दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है
जी।
शायद उससे भी ज्यादा हो। तो इतने बड़े तादाद के सामने ये थोड़े से लोग किस तरह से साजिशों के जाल बिछाते हैं, कैसे उनको फंसाते हैं, मसरूफ रखते हैं उनको, तो इसको सबको समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये किसी हद तक मैं नहीं मानता हूँ कि हम माशी तौर पर कमजोर हैं। अगर आप 49 मुल्कों 50 मुल्कों का तजिया करें तो मुस्लिम ममालिक के पास इतना पैसा है कि वो इस दुनिया को अपनी ताकत सही मानों में दिखा सकते हैं, लेकिन तैयार कौन है? सब तो अपनी हुकूमतों को बचाने पे लगे हुए हैं। और अभी जो लीबिया में हुआ, जो इससे पहले इराक में हुआ, जो इससे पहले अभी जिस तरह से हो रहा है, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अरब हुक्मरान जो हैं वो बस इस तगदो में लगे हुए हैं कि अपने इख्तदार को किसी तरह से बचा कर रखें। अभी जो कुछ आपके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है ईरान के, उनको भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह से लोग हुकूमतों के आगे बुरी तरह से अपनी जान निसार कर रहे हैं और उनको कत्ल गारतगिरी वहां पर हो रही है। ये सूरत हाल बड़ी तश्वीशनाक है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को एक फंड कायम करना चाहिए जो इस किस्म के मामलात की कानूनी, और बल्कि मैं इस हद तक कहूंगा गैर कानूनी जंग भी लड़ सके। गैर कानूनी जंग से मेरी क्या मुराद है? मेरा ख्याल है आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे कि एक बड़ा फंड होना चाहिए इस किस्म की। ये देखिए मेरा जहां तक ख्याल है ये सब चीजें कानून के जरिए और हुकूमतों की तरफ देखने से हल वल नहीं होती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लाइन पे रहिएगा और नाज़रीन हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगु जारी रहे।
يا رسول الله
जी नाज़रीन, तौहीने रिसालत के सिलसिले में कौन सा मुहर्रिक है जो इसके पीछे कार फरमा है, गुफ्तगू हो रही है। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। सिद्दीकी साहब, जनाब आप ये देखिए कि ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका में जो हुआ और फ्रांस ने जो किया है, इसका जो नतीजा सामने आया है, इसमें ख़ुद इनके लिए भी तो मुश्किलात पैदा हुई हैं। ये तौहीन आमेज़ फिल्म के ख़िलाफ़ आप देखें कि लीबिया में अमरीकी सफ़ीर और 3 सफारतकार मार दिए गए, इसके साथ ही यमन में अमरीकी सफारतखाने पर हमला हुआ, अगरचे वहाँ अमरीकियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा बल्कि अमरीकी फ़ौजियों की फायरिंग से 7 मुजाहिरीन शहीद हो गए। इसी तरह से पाकिस्तान में कराची में अमरीकी कौंसलेट पर हमला हुआ। इस्लामाबाद में मुसलसल लोग रुकावटें तोड़ के अमरीकी सफारतखाने तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में ऐसा हुआ, कई मुल्कों में और बहुत से मुल्कों में अमेरिका ने अपने सफारत खाने आर्जी तौर पर ही सही कौंसल खाने और दीगर मराकज़ बंद कर दिए हैं। फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि जुमे को 20 मुल्कों में उसके सफारत खाने, कौंसल खाने, स्कूल, कॉलेज और सकाफती मराकज़ बंद रहेंगे। तो आप ये देखें कि ये जो हरकतें हो रही हैं, इससे उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनके लिए भी तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसके बावजूद वो इस पर क्यों मुसिर हैं कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए?
देखिए मेहदी साहब, मैं ये महसूस करता हूँ और अक्सर इस पे गौर व फिक्र भी करता रहता हूँ कि क्या अल्लाह ताला की जो गिरफ्त होती है या अल्लाह ताला की तरफ से जो कोई अजाब मुसल्लत होता है तो उसकी क्या क्या नौइयतें हो सकती हैं, क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। आप इन्हीं ममालिक के रवैये को देखिए जिनका तस्करा आपने भी किया और हम भी कर रहे हैं। अमेरिका को देखिए, 28-30 करोड़ इंसानों का मुल्क है, वसाइल भी रखता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अपने आप को कहलवाता है और सबसे कदीम जमहूरियत भी अपने आप को कहलवाता है, दानिशगाहें भी हैं, बड़े बड़े गौर व फिक्र करने वाले थिंक टैंक्स भी हैं, बड़े बड़े दानिश्वर भी हैं, बड़ी किताबें लिखी जाती हैं और बाकायदा वहाँ पर दुनिया भर के मामलात को जांचने का एक सिस्टम मौजूद है, फ़ज़ा के अंदर उनके सैारे मौजूद हैं, जायज़ा लेते रहते हैं, गौर व फिक्र होता रहता है, बड़े बड़ी उनकी तवाना एजेंसियां मौजूद हैं जो काम करती रहती हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो चंद ऐसी बुनियादी बातें जो एक आम आदमी भी समझता है वो उनकी समझ में नहीं आ रही हैं और वो मुसलसल एक ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जो तबाही का और गारतगरी का रास्ता है ख़ुद उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक गिरफ्त है जिसमें ये कौमें आई हुई हैं। आप देखिए कि 9/11 के बाद जो कुछ खेल 11 साल से खेला जा रहा है उसमें अमेरिका की मईशत गारत हो गई, कमोबेश पूरी की पूरी जंग खरबों डॉलर उस पर कर्जा चढ़ गया। अब वो कहा जाता है कि जितने उसके मासूलात हैं, साल भर का जितना उसकी कौमी आमदनी है उसके बराबर वो कर्जा लेता है तो उसके नान नफका चल रहा है, दुनिया भर के कर्जों के बोझ तले वो आता जा रहा है, मईशत डूब रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सेहत के मसाइल वहाँ पैदा होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते में सिवाय इसके कि उसके लिए नफ़रतें पैदा हो रही हैं और लोगों के बारे में, लोगों के दिलों में उसके लिए एक कदूरत पैदा हो रही है, गुस्सा पैदा हो रहा है, इश्तियाल पैदा हो रहा है, तो करोड़ों और अरबों और खरबों डॉलर खर्च करके जो मुल्क अपने लिए नफ़रतें खरीद रहा हो, अपने लिए गुस्सा खरीद रहा हो, अपने लिए इश्तियाल खरीद रहा हो, अपनी सलामती के लिए खतरात खरीद रहा हो, अपने सफारतकारों के लिए खतरात खरीद रहा हो, आप उसकी दानिश के बारे में सोच सकते हैं, या तो दानिश सिरे से है ही नहीं या फिर वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो अल्लाह की गिरफ्त में आए हुए हैं और जो हमारे कुरान करीम के अल्फाज में है कि उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती हैं और उन्हें समातों से मारूम कर दिया जाता है और उनके दिलों पे मोरें लगा दी जाती हैं, ये वो लोग हैं। बाकी ये रहा कि ये सारा खेल जो हो रहा है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इनकी घुट्टी में पड़ी हुई चीज़ें हैं। अबू गुरैब की दास्तानें आपके सामने आई थी, उस वक्त भी ये वाक़यात आए थे कि किस तरह कुरान करीम के औराक फाड़े गए, किस तरह वहाँ के गलाजत गाहों में मजबूर किया गया कि उनको डाला जाए। हमारी एक पाकिस्तान की बेटी जो आफिया सिद्दीकी वहाँ पे कैद है, उसकी वालदा मोहतरमा मुझसे गुफ्तगू कर रही थी कुछ दिन पहले, और कह रही थी कि देखें सब कुछ काबिले बर्दाश्त है, लेकिन एक दिन उस बच्ची को मजबूर किया गया, कुरान करीम के औराक ज़मीन पर रखे गए और कहा गया कि इन पर चल के बाहर जाओ। तो इस तरह के वाक़यात, और फिर एक पादरी ने कुरान करीम चर्च के अंदर इबादत गाह के अंदर खड़े होकर जलाया। और फिर मुझे इससे भी पहले याद है, मैंने उस पर लिखा भी था कि जब ये अलकायदा का और ये सारा अफ़गानिस्तान का सिलसिला चल रहा था, तो एक शख्स ने जो टॉयलेट पेपर बनाने का काम करता था, उसने कहा जी कि हम उसामा बिन लादन की तस्वीर को कुछ अरबी कलमात के साथ टॉयलेट पेपर्स बनाते हैं उसका। और वो कहता है, वो ख़ुद अपनी कहानी बयान करता है कि मैंने शुरू में ये सोचा कि अमेरिका तो बड़ी महज़ब सोसाइटी है, शायद ये चीज़ बर्दाश्त ना करे, लेकिन मैंने जब उसको जारी किया, इश्तहार दिया छोटा सा नेट पे, तो उसकी इतनी मांग आई, और सबसे ज़्यादा मांग पेंटागन से आई, और कोलन पावल ने बजाते ख़ुद कहा जी कि हमें इतनी मकदार में सप्लाई करें। तो वो तस्वीर वाले और अरबी इबारत वाले टॉयलेट पेपर जो थे, वो उस शख्स की किस्मत बदल गए और वो इतने बिके। ये यहाँ से आप उस कौम की मेंटेलिटी का और उसकी जहनीत का और उसकी पस्ती का अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर हम दूसरे नुक्ता नज़र से सोचें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी इन तमाम खरखशों से, इन तमाम नापाक कोशिशों से बहुत मावरा है, बहुत बुलंद है, उसकी रफ़तों तक ये पहुँच ही नहीं सकते। तो ये करते भी रहें तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुसलमान ठंडे पेटों इसको बर्दाश्त कर लेंगे। वो कमज़ोर सही, लेकिन कोई भी सच्चा मुसलमान, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, नाम का मुसलमान भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आप 1.25 अरब मुसलमानों की, 1.5 अरब के लगभग मुसलमानों की दिलाज़ारी करोगे, तो चले मादी नुक्ता नज़र से हम सोचते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, तो उन मुसलमानों के दिलों में नफ़रतों के बीज बोकर आप अपनी सलामती का कितना सामान करोगे, अपने तहफ़ुज़ का कितना सामान करोगे, और अपने लिए कितनी खैर सगाली की फ़ज़ा पैदा करोगे। ये अभी मैं इस्लामाबाद के स्टूडियो, आपके स्टूडियोज़ में बैठा हूँ, और मुझे घर से यहाँ तक आने में भी 10 दफ़ा मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। इत्तफाक से ये इलाका जो हमारे सफारतकारों का इलाका है, उससे ज़रा फासले पर है, वहाँ मैदान जंग बना हुआ है, और लोग जो हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से किसी की रहनुमाई के बगैर उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जलाव गहरा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, पुलिस के मुतद्दद अफराद ज़ख्मी हो रहे हैं, और सफारतकार जो भी होंगे वो ज़ाहिर है कि अपने घरों के अंदर, अपने पनागाहों के अंदर, अपने वो जो उन्होंने आहनी मोर्चे बना रखे हैं उनके अंदर दुबक के बैठे होंगे। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है इस तरह। और कल फिर यहाँ पर एक बड़े एहतजाज का पहले ही प्रोग्राम बनाया जा चुका है, पाकिस्तान भर में तातील का ऐलान किया गया है, जुमा की नमाज के बाद अपीलें की जा रही हैं लोगों से। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इन चीज़ों से अमेरिका को क्या, एक फ़र्द को, एक फ़र्द के इनफरादी फेल को, अगर हम इनफरादी भी कहें, और वो इनफरादी नहीं है, अगर 100 यहूदियों ने उसके लिए कोई $50 लाख का चंदा किया, टेरी जोन्स नामी पादरी ने उसकी तशहीर में, तो इसके पीछे पूरी एक कंस्पायरेसी मौजूद है। और फिर जो बार बार कहा गया, मेरे दोस्तों ने भी कहा, दौरे में आ रहा है, मुनाफिकाना तर्ज अमल है, अंदर से आप कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, और फिर बाहर से भी एक के लिए और हैं, दूसरे के लिए और हैं, किसी शहजादे की या शहजादी की तस्वीर छपती है तो आपकी गैरत जो है वो जोश मारती है और आज़ादी इजहार राय ख़त्म हो जाती है, नबी करीम की नऊज़ुबिल्लाह तौहीन की जाती है, तज़ीक की जाती है, तो वहाँ उसको आप उस लिबादे में लपेट देते हैं। तो ये तंग नज़री, ये मुनाफिकत, ये दौरे में आ रहा, इन अकवाम की अपनी साख को बड़ा ख़राब कर रहे हैं, इनकी अपनी तहजीब के बारे में सवालात उठा रहे हैं, इनकी अपनी मुतफ़न सोच के बारे में सवालात उठा रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि इन चीज़ों से आलम इस्लाम के अंदर अवामी सतह पे, हुक्मरानों के जो रवैये हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन अवामी सतह पर उनके अंदर ज़्यादा एहसास की गर्मी आएगी, ज़्यादा हिद्दत आएगी, मगरब और अमरीका के ख़िलाफ़ उनके जज्बात और ज़्यादा पुख्ता होंगे। ये मैं इसको हेल्दी अलामत समझता हूँ, सेहतमंद अलामत समझता हूँ कि कम से कम शऊर की रोशनी तो पैदा होगी। जहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक है, उनका बहुत तस्करा हो चुका कि ये राख के ढेर के ऊपर बैठे हुए जो मुजावर हैं, अगर इनके अंदर तवानाई हो, इनके अंदर ताकत हो, ये कुछ कर गुजरने की, इनकी मसलतें हैं, कोई बादशाहत अपनी बचा रहा है, कोई अपनी तवील आमरीत बचा रहा है, कोई अपनी जमहूरीत बचा रहा है, कोई कुछ बचा रहा है, तो ये अपने तहफ़ के लिए, अपनी शिकम परवरी के लिए, अपने इक्तदार के लिए वो कुछ करने पे आमादा नहीं है जो कुछ इन्हें करना चाहिए। 1.25 अरब मुसलमानों की आवाज़ कोई छोटी आवाज़ नहीं होती है, 57 ममालिक की आवाज़ कोई छोटी आवाज़ नहीं होती है। मुआशी नाकाबंदियाँ हो सकती हैं इन ममालिक की, नाखून चने चबवाए जा सकते हैं, तेल के सारे ज़खायर लिए बैठे हैं, 10 दिन के लिए कहें जी कि हम तेल नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन ये कौन कहेगा? किसके अंदर इतना कस्बल है, किसके अंदर इतनी हमीयत है, या किसके अंदर इतनी तवानाई है कि वो इनकी आंखों में आंखें डाल के देखें? ये हमारी मजबूरी है। लेकिन आप ये भी देखिए कि किस तरह बड़े बड़े कले जेर हो रहे हैं, किस तरह आमरीतें टूट रही हैं, किस तरह मलूकियतें लर्जा बरंदाम हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अमरीका को भी इसका एहसास होगा, यूरोप को भी होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया,
और शायद उम्मत मुस्लिमा के अंदर ज़्यादा बेदारी हम देख सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, अमेरिका और यूरोप अगर ये समझ रहा है कि इन हरकतों से वो मुसलमानों की तजहीक कर सकेगा, उन्हें एहसास हकारत में मुब्तला कर सकेगा, तो नतीजा तो इसका उल्टा सामने आ रहा है कि पूरे इस्लामी वर्ल्ड में, पूरे आलम इस्लाम में इस वक्त अमेरिका से जो नफरत पाई जा रही है वो अपने उरूज पर पहुंच रही है, और ऐन मुमकिन है कि ये नफ़रत किसी दिन तहरीक में तब्दील हो जाए और उस तहरीक के नतीजे में इस्लामी दुनिया से मगरिब, अमेरिका और आलमी साम्राज्य का वजूद ही ख़त्म हो जाए, जिस तरह से कि मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के बाज़ मुल्कों में इस्लामी बेदारी के नतीजे में साम्राज्य को यहाँ से जाना पड़ा है। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ अपने अख्तिताम को पहुँचता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।